है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।
शांति, ओम शांति। तो आज हम सब ने गीत सुना, जिसकी गीत के आधार से जो टॉपिक निकाली गई है, जैसे कि टॉपिक का शीर्षक है कि गाली यूं के गुलाब, तो गालियों के गुलाब अर्थात हम सब जानते हैं कि दुनिया में गुलाब का जो फूल होता है उसके जड़ तो ऐसी जगह पर होते हैं जैसे कि जहाँ पर गोबर होता है और भी कई प्रकार के खाद बनाए जाते हैं, वो खाद उसकी जड़ में डालते हैं तो उसको रूपांतरित करके अपने पुरुषार्थ के आधार से कितना सुंदर फूल हम सबको उपलब्ध कराता है। खुशबू भी होता है, रंग होता है, उसमें रूप होता है और सबके नज़र उसमें, सबके टिकते हैं उसमें, उस फूल के ऊपर सबका नज़र होते हैं, सबकी निगाहें टिके होते हैं। तो वो तो हो गया स्थूल फूल गुलाब। तो बाबा हम सबको भी रूहे गुलाब बनाने चाहते हैं, खुशबूदार फूल बनाने चाहते हैं, हमारा भी जो खुशबू चारों ओर फैले और सभी आत्माओं को आकर्षित करे। वो फूल तो दो चार दिन में तो जैसे कि पंखुड़े उतरने लग जाते हैं, फिर वो दूसरा रूप बदलना शुरू कर देता है, दूसरा फूल और निकालते ही रहता है। हम भी अपनी यात्राओं में हर दिन इस लक्ष्य को आगे रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा हम सबको रुए गुलाब के नज़र से देखता है, कितनी हमारे जीवन में मन वचन कर्म में पवित्रता आई है, कितने समय हम बाबा को याद करते, स्मृति की शक्ति हमारी कितनी बड़ी है और निरंतर याद की यात्राओं में हम कहाँ तक आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम भी अपने जीवन को किन किन बातों में रूपांतरित कर सकते हैं और उस स्थूल गुलाब ने हम सबको ऐसे नेगेटिव ऊर्जा लेकर के हम सबको इतनी सुंदर चीज दे सकता है, तो हमें भी आध्यात्मिक मार्ग में चलकर किन किन बातों में परिवर्तन की आवश्यकता है, किन किन बातों में हम परिवर्तन कर सकते हैं और किन किन बातों में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी हुई है, और हम समझते हैं कि परिवर्तन नितांत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो हम आगे बढ़ तो रहे होते हैं लेकिन ना के बराबर परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इसके आधार से हम कह सकते हैं इतनी सारी सुविधाएं और इतनी सारी प्राप्तियां होने के बावजूद भी हमने यथार्थ रूप से परिवर्तन के टाइम पर अपने को परिपक्व बना के नहीं दे सके, नहीं दिखा सके, तो आने वाली पीढ़ी हम सबको यही कहेंगे कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप सबने अपने जीवन को जितना और उतने में अंतर रख दिया, तो इसीलिए हम सब रूहानी गुलाब बनने जा रहे हैं और हम सब का लक्ष्य भी यही है। इसीलिए हम अपने जीवन को किन किन बातों में रूपांतरित कर सकते हैं, जैसे कि उसने नेगेटिव चीज लेकर के जड़ से पॉजिटिव चीज हमको दिया है, तो हम भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो परिवर्तन क्या क्या करना है, तो इसके कुछ पॉइंट हमने निकाले थे। तो एक में तो हमने निकाला कि जैसे कि बदला लेने की भावनाओं को हमने बदल करके दिखाने का लक्ष्य रखा है। अब बदला लेने की भावना नेगेटिव ऊर्जा है, क्योंकि वो जब मन के अंदर सवार हो जाता है तो इंसान का नींद आराम हो जाता है, क्योंकि वो दुखी करने लग जाता है। तो हमने भी उससे ये सीखा कि उस नेगेटिव ऊर्जा को जो बदला लेने की भावना थी उसको बदल करके दिखाने का लक्ष्य रखा है। तो बदल करके दिखाने के लिए तो बहुत सारी अभी भी अवसर हैं, क्योंकि एक एक चीज में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीवन में, जैसे कि चाल चलन, बोल वचन, व्यवहार, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बहुत कुछ जुड़ी हुई है। तो वहाँ एक एक चीज को हम इसको आज इसको परिवर्तन करेंगे, कभी उसको करेंगे, इस सब एक एक करके अगर हम शुरू करेंगे तो कभी भी हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए जो बदलाव का जो प्रोसेस है, बीज में जब हम टिक जाते हैं, परमात्मा पिता की याद में हम डूब जाते हैं, टिक जाते हैं, और लंबा समय बीज रूप स्थिति का जब हम अनुभव करते हैं तो उसमें धीरे धीरे सब प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। अटेंशन तो हमें बीच बीच में सबको देना पड़ेगा, चेकिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें एक साथ परिवर्तन आने लगता है। इसीलिए हमने जीवन को बदल करके दिखाने के लिए ठान लिया है। दूसरे में हमने निकाले कि रेस को रिस में बदल, रिस को रेस में बदलने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि ईर्ष्या रिस तो सबके मन में कुछ न कुछ रिजर्व संस्कार के कारण से भी आता है, थोड़ी सी ज्ञान की रोशनी न होने से भी आता है। ज्ञान की रोशनी न होने से भी हमारे जो अंधकार का जो क्षेत्र है उसमें कुछ न कुछ वायरस पैदा होते रहते, और रिस को रेस में बदल दिया, तो रेस करके दिखाने के लिए बाबा ने भी हम सबको यही शिक्षा दिया है कि रिस न करो, रेस करो। तो रेस करने के लिए सबको आजाद करके रख दिया बाबा ने, रिस करते रहेंगे तो हम ठहर जाएंगे, क्योंकि उसमें उन्नति प्रगति नहीं होगी हमारी। जैसे कोई किसी चीज को पकड़ के बैठता है और उसको आगे बढ़ने के लिए कहेंगे तो आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें वो जकड़ा हुआ है। इसीलिए सब कुछ छोड़नी पड़ेगी और एक पहले तो अपने ऊपर ही रेस करना है, कंपटीशन करनी है, कल से आज, आज से कल, आज से कल से परसों मेरी कितनी उन्नति प्रगति हो रही है। तो हमारे रेस में सब कुछ आ जाता है फिर तो, इसीलिए हमें रिस नहीं करना है, स्वयं का रेस करके आगे निकल रहा है। उसके बाद में जो नेगेटिव है, अशुभ भावनाएं हैं, अशुभ कामनाएं हैं, अशुभ संकल्प है, अशुभ विचार है, इसको बदल करके शुभ भावना और शुभ कामना, स्वच्छ चिंतन, प्रभु चिंतन में हमने अपने को बदल दिया है, अशुभ को पूरे बदल दिया और शुभ भावनाओं में कन्वर्ट कर दिया, शुद्ध संकल्पों में हमने अपने आप को बदल करके दिखाने का लक्ष्य रखा है। शुद्ध संकल्प जीवन की ऊर्जा है, एनर्जी है और परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इतनी सारे जो नेगेटिव बातें हैं वो हमारे मन के अंदर में सदा ही कुछ न कुछ जलवा दिखाते ही रहता है। इसीलिए दुनिया में कहा भी जाता है दो चीज का जो संस्कार होता है, पानी को भी अगर ऐसे फ्री छोड़ देंगे वो नीचे की ओर बहती है, मन को भी अगर फ्री छोड़ देंगे वो नेगेटिवता की ओर बढ़ती जाती है, नेगेटिव की ओर होता है उसका झुकाव। तो अटेंशन और चेकिंग का पहरेदारी है, पहरेदार अगर नहीं होगा तो वो वही काम करता रहेगा, उतर जाएगा फिर उसको पकड़ के चढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर हमने चार में निकाले कि अवगुण रूपी जो कंकट है ना, अवगुण रूपी जो कंकट हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो इसको बदल करके हमने क्या किया, विशेषताओं को देखने का, गुण को देखने का नजर बना लिया है और लक्ष्य रखा है कि ये करके ही दिखाएंगे, क्योंकि उस चीज को तो हमने जन्म जन्म से इस्तेमाल किए हैं लेकिन हमारी कभी भी चढ़ती कला नहीं हुई है, हमारे जीवन में खुशी शांति नहीं आया है उससे, उसने हमको ही अपने आगोश में लिया है। इसीलिए हमने चाह करके भी हमारे पास में सब कुछ होने के बाद में भी हमारे पास में खुशी का जैसे कि अकाल पड़ गई है तो अब इस चीज को हम क्या करेंगे, हाँ गुण उठा करके, विशेषताओं को उठाना है, गुण को उठाना है। कहीं भी नजर पड़ती है दुनिया में तो सब नेगेटिव व्यर्थ ही दिखाई देता है, लेकिन गुण ग्राही जिसके पास में दृष्टि है वो कहीं न कहीं से वो तलाश करेगा अच्छी चीज मुझे कहाँ से मिलेगा, तो अच्छी चीज तो कहीं न कहीं से मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसे सब कुछ टोटल अंधकार तो नहीं है, उसमें कहीं न कहीं रोशनी तो टिमटिमाती हुई नजर आएगी, और उसमें हमें पॉजिटिव ही उठाना है, गुण को ही उठाना है जैसे भी करके कैसे भी करके, क्योंकि इसकी अभ्यास भी पक्की करनी पड़ेगी, ऐसे हल्के फुल्के में ये चीजें नहीं होता है, और ऐसे संस्कार डाले बिना ये आदत हमारा पड़ता नहीं है, इसलिए आदत डालनी पड़ेगी, पहले तो लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, दृढ़ संकल्प रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से हमें तलाश करना है कि ये चीज कैसे भी करके हमें मिलना चाहिए और मिल ही जाएगा, पॉजिटिव उठाने की भावना। तो उसके बाद में निकाले कि पांच नंबर में कि मैं और मेरे के चक्कर में हम फंस गए थे, मैं और मेरा, बाबा ने बोला ये नेगेटिव एनर्जी, द्वापर से कलयुग तक हम इसी चक्कर में रहे, भक्ति करते तो भी यही बातें हम रटा लगाते थे, तो ज्ञान में आने के बाद तो थोड़ा समझ में तो आ गई है, लेकिन अभी भी अंदर में इसकी नस नस में इसकी प्रभाव है, तो हमने उसको मैं और मेरे को तुम और तेरे में बदल दिया है। और बाबा ने तो इजी मेथड हम सबको बता दिए, मैं आता है तो मैं आत्मा हूं, है ना, मेरा आता है तो मेरा बाबा में बदल दिया है इजी टेक्निक लगा दिया बाबा ने, नहीं तो इसको हमारे बस की बातें नहीं थी इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को इतना कन्वर्ट करने के लिए। तो बाबा ने हम सबको क्या समझ के इतनी अचित फॉर्मूला बताई, सहज फॉर्मूला बताए, क्योंकि द्वापर से कलयुग तो हमने चक्कर काटते काटते परमात्मा बाप को भी पहचान नहीं सके, कितने ठोकर खाए होंगे हम सब ने। अगर मंदिर में जाकर के हम देखते हैं तो मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए 700 बार चक्कर काटने पड़ते। कोई कोई बड़े बड़े मंदिर में यह होता है कि वो चक्कर काट के भीड़ भी कम होगी, एक लोगों को जैसे कि वहां तक पहुंचने के लिए मानसिकता को बनाने के लिए हो, क्योंकि सीधे वहां पर पहुंच गए तो मानसिकता के धरातल इतना स्ट्रांग नहीं होता है, और भगवान से जो वरदान मिलने वाला है हलचल वाले दिमाग में तो मन में तो वो चीज बैठेगी नहीं। तो वहां पर इतने रूल बनाए होते हैं, 700 बार वो कोना टेढ़ा वाला रास्ता निकल के वहां पहुंचेंगे तब तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, उसके प्रति भावना श्रेष्ठ हो जाएगा, और वो पाने की जो अंदर में जुनून जज्बे जागे होते हैं और वहां पर कुछ न कुछ लेकर के आता है वो। तो इसीलिए हम सबको भी बाबा ने इतनी मेहनत करके आए हैं तो इनको इतना ज्यादा मेहनत न करा दिया जाए, इसीलिए सही इतना सरल फॉर्मूला बताए बाबा ने। तो इसके बाद आगे निकाले थे जैसे कि गाली ने हमको क्या किया, नष्टमोह बना दिया। हाँ, क्योंकि अगर लोग इतना गाली न दिए होते तो भगवान के घर में पहुंचते नहीं थे है ना लोगों के तीखा टिप्पणी करना, ताने वाने बोलना, ये सब बातें तो सबने सुने हम सबने। तो ये नेगेटिव एनर्जी को हमने वो परम एनर्जी के साथ जोड़ दिया है तो हम सब क्या बन गए, नष्टमोह बन गए, बनते जा रहे हैं। तो मंजिल का लास्ट निष्कर्ष है नष्टमोह स्मृति लब्धा। तो गाली देने वालों को भी हम आगे जाके इसमें हैं। तो उसके बाद में हमने 7 नंबर में जो विषम परिस्थिति को भी सम बना के दिखाए, विषम परिस्थिति को भी सम बना करके दिखाए, सो स्थिति के आधार से, क्योंकि विषम परिस्थिति तो संसार में कहीं ना कहीं तो होता ही रहता है। जहां पर सो स्थिति स्ट्रांग नहीं होगा वहां विषम परिस्थिति ही लगेंगे, छोटी छोटी बातें भी। तो उसको भी हमने बदल करके दिखाए तो हमने उसको भी वातावरण अनुकूल बना दिए। तो उसके बाद में जो हमारा नजर था 8 नंबर में कि इंसान को देखने का जो देह को देखने के कारण से जितने प्रकार की जो विकृतियां आई है देह को देखने से, तो बाबा ने हम सबको क्या सिखाया कि आत्मा है, सभी संसार की आत्माएं हैं, ये हर एक आत्मा यूनिक एक्टर्स है, ये सभी अपने अपने पाठ में मशगूल है और इनका कोई दोष नहीं। बाबा ने बोला कि ये निर्दोष है, निर्दोष में भी बाबा ने एक शब्द और जोड़ दिया, ये संपूर्ण निर्दोष है। तो इतनी ऊंची नजर बाबा ने दिया है। आज कहीं कुछ थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना तो लोग वहां पर इसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया कि बातें इतनी ज्यादा हावी हो जाता है कि माहौल गर्म हो जाता है वहां पर। लेकिन बाबा ने तो हम सबको इतनी सरल तरीके से बता दिए, उसके पास में आपका हिसाब किताब है, इसीलिए थोड़ा सा आपको वो रास्ता दिखाने के लिए, थोड़ा सा आपको जागृति में लाने के लिए कर रहा है। अगर हिसाब किताब नहीं होता है तो सब अपने अपने हिसाब से मशगूल होके जी रहे हैं, कौन किसको पूछने वाला है दुनिया में। और इतना रिस्क लेकर के आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, जैसे कि वो तो एक्सरे मशीन है आपके लिए, तो वीडियोग्राफी है वो, और भी सारे जो विज्ञान के साधन है वो जैसे बन करके वो भीतर की चीज को बाहर दिखा देते हैं, इसी रीति से आपको अपना रिक्स मोल करके भी आपकी कमी कमजोरी दिखा रहा है। तो उसको तो हमें कितना थैंक्स देना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि सभी आत्माओं को निर्दोष नजर से देखने की अगर आदत पड़ जाती है तो किसी के लिए संकल्प चलाने के लिए, संकल्प चलने के लिए कोई चांस ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये चीजें हम सबको इतना निश्चिंत कर देता है, बेफिक्र कर देता है। क्यों? क्योंकि ये चीज जैसे कि इस क्षितिज से जब उधर देखते हैं ना, वार पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट लाइफ हो जाती है, स्वयं भी और दूसरों के लिए भी। और हम भी छूट गए तो दूसरों को भी छुड़ाया हमने, नहीं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा वहां हमारे बन करके रह जाएगी और हमारे परिवर्तन में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए फिर हमने नौवीं निकाले कि जो गाली को देहवान को गलाने का आधार बना दिया, देहवान अर्थात तीन बातें बाबा ने बताए हैं, देहवान, देहाभिमान, देह अहंकार। जैसे कि हमको उस गाली ने भट्टी में बिठा दिया, भट्टी में बिठा करके अपनी कमी कमजोरियों को पिघालने के लिए वो निमित्त बन गया है। जैसे कि कुकर प्रेशर में कोई चीज कच्चा चीज डालते हैं, दो चार सीटी लगाते हैं, उसका पहले के अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। जैसे कि उसने भी हमारे लिए कुकर प्रेशर का काम किया है, हमारी देहवान को गलाने के लिए। उसमें तो दिखाते हैं पांडव हिमालय के हैं, हिमालय में गल मरे, तो हम सबको भी कोई ना कोई गलाने वाले मिल जाते हैं देहवान को। तो इन सबको भी हम इसी रूप से लेंगे कि हम इस सब चीजों से हम अगर फारिक हो गए तो हम रुए गुलाब सोते बनेंगे। तो उसके और 10 नंबर में हमने निकाले, हम अपने औकात को भूले हुए थे। औकात को भूल करके थोड़ी सी अकल भगवान ने दिए हैं तो उसके कारण से दुनिया सबको सबक सिखाने लग जाते हैं, शिक्षा देने लग जाते हैं। तो बाबा ने हम सबको ये शिक्षा दिया कि तुम्हें अभी बाबा के बुद्धि का जो अहंकार है उसको खत्म करना है। और बुद्धि का अहंकार लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, तो इसीलिए बाबा ने दिया हुआ नॉलेज को हमने यूज करके उसको जैसे कि अकल को शकल देने का काम किया है। अकल का रूपरेखा ही बदल गई थी, तो उसको शकल देना माना परमात्मा की जो श्रीमत मिली हुई है उसके अनुसार हमने उसको काम में लिया है। तो उसके बाद में 11 में निकाले थे, क्योंकि बाबा ने जो अभी 11 तारीख जो मुरली चली थी, पांच विकारों को ही रूपांतरित करना सिखा दिया है। तो पांच विकारों का रूप बदल गई हमारी, काम विकार को सुभावना में बदल दिए, क्रोध को रूहानी खुमारी में बदल दिया, लोभ को अनासक्त वृत्ति में बदल दिया है, मोह को स्नेह में बदल दिया और अहंकार को सो अभिमान में बदल दिया है। तो बाबा ने हम सबको ये तरीका बता करके उस सबका रूपांतरित रूप हम सबको दिया है। तो बाबा ने जो बताए हम वही कर रहे हैं, इसीलिए इतनी जबरदस्त नेगेटिव ऊर्जा है ये सब, लेकिन बाबा ने हल्के रूप से उधर बदल दिया। जैसे कि दुनिया इसके लिए इतनी ज्यादा साधना तपस्या करते हैं लेकिन ये बातें समझ नहीं पाते, लेकिन बाबा ने हम तुम्हारी सो स्थिति जैसे जैसे ऊपर उड़ती जाएगी तो परिस्थिति विघ्न बाधा तो ये चीज नीचे होने से आए, ग्राउंड लेवल में थे इसीलिए वो चीजें हमारे ऊपर हावी हो रही थी। जैसे हमारी स्थिति ऊपर 4 मंजिला ऊपर पहुंच जाते हैं तो पूरे सिटी नजर आने लगता है, और उसमें अगर मोबाइल टावर में चढ़ जाते हैं तो और दूर दूर तक दिखाई देती है। तो हमारी स्थिति का जो टॉप लेवल होगा तो छोटी छोटी नीचे की चीजें हमको भाएगी भी नहीं और टच भी नहीं करेगी। तो स्थिति को बदलने की जो फॉर्मूला बाबा ने बताई है, रूपांतरित कर दिया है हर चीज को। तो उसके आगे कितना नंबर, 12 नंबर बता दिया। तो उसके बाद में जैसे कि अब घर जाना है, हम ठहर गए थे अब पूरे रूप से, तो ये स्मृति दिलाई, बाबा ने भी दिलाए, तो दीदी उनका भी यही बातें हम सब ने सुने, कई बार सुने। तो इसका मतलब छोटी छोटी जो कंप्लेंट लेकर के जाते थे दीदी के पास में, तो दीदी क्या कहती थी, छोड़ो ना अभी सारी बातों को, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी का समय है, ये सब बातों में क्यों उलझते हो। तो इस तरीके से हम सबको फारिग कर दिया था। तो इसके बाद में जैसे कि ये चीजें हमारे जीवन में, जैसे कि हम ठहर जाते हैं ना, तो हर चीजें हमें को दुखी करता है, कोई न कोई चीजें हमारे जीवन की प्रगति में बाधा बन जाता है, और आगे हम अंदर नहीं होते हैं तो बाहर में कुछ न कुछ दिखाई देती रहती है। तो इसीलिए आगाह किया है कि अब घर जाना है तो ये सब चीजों को छोड़ो, अब स्मृति दिला दिया। उसके बाद में कि जैसे कि गाली को गोल स्मृति दिलाने के निमित्त बन गया, लक्ष्य को स्मृति दिलाने वाला बन गया है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो गाली को गोल स्मृति दिला दिया, गोल की स्मृति। गोल माने हमारा थीम। तो वो गाली को हमने क्या समझा, गोल को याद दिला रहे हो, नहीं तो हम जैसे कि दुनिया में भी कहते हैं ना कि वो गौतम बुद्ध जब वहां के उस एरिया के माने उसके देश में वो थोड़ा सा उसको मुखिया बनाया गया था उस जंगल जाने से पहले, तो उसमें जैसे कि कुछ एक आपस में दो देश की छोटी छोटी देश हुआ करते थे, तो दोनों के देश के बीच में लड़ाई होने वाली थी, तो खून खराबा हो जाएगा, वो ये नहीं चाहते थे, अगर ये लड़ाई अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो रात रात भागने का होता था उससे। तो फिर उसकी जैसे कि लक्ष्य स्मृति याद आ गई उसको, वो सारी बातें जब होने वाली है तो मैं ये काम क्यों करूं, तो फिर उसने लक्ष्य बना लिया, अभी निकलना है मुझे अपने लक्ष्य के ओर। तो ऐसे नेगेटिव ऊर्जा ने उसको पॉजिटिव पावर भर दी, तो फिर आप लक्ष्य के ओर चल पड़े। तो उसके बाद में जैसे कि वातावरण वायुमंडल के दलदल में फंसे हुए थे हम सब, और वातावरण वायुमंडल क्या चीज है ये भी हमको पता नहीं था, और हम भी उस दलदल में फंसे हुए थे, दूसरों को भी फंसाने में हम लगे हुए थे। तो उसमें हमको पॉजिटिव हमने ये लिया कि अब ये वातावरण को हमें भी हमें बनाना है, इसको बदलना है, न किसी को इस वातावरण में फंसाना है, ये लक्ष्य हमने समझ लिया और लक्ष्य बना लिया कि ये काम मुझे करके दिखानी है, और इस वायुमंडल वातावरण का जो इफेक्ट है वो दूसरों को भी न पड़े, मैं अगर ठीक हो जाऊंगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा, तो दूसरों को भी उसमें जैसे कि दलदल में फंस जाए ऐसा कभी मन में नहीं आएगा। इसलिए हम इसके ऊपर भी बाबा ने बोला है कि वातावरण वायुमंडल का भी आपका हिसाब किताब बनेगा, क्योंकि आपने जो वाइब्रेशन दुनिया में छोड़ी है उसके आगोश में अगर कोई आता है तो उसका पूरा हिसाब किताब आपको लग जाएगा, आपको भुगतनी पड़ेगी। तो इसके बाद में आगे जैसे कि हम पहले जैसे कि आलस्य और अलबेलेपन के डलप में सोए हुए थे, हमें जगाने वाला कोई नहीं था, तो किसी ने कोई निमित्त बन करके हमारे ऊपर मेहरबानी की, गाली गलौज करके लक्ष्य उद्देश्य को स्मृति दिला दिए, तो उस है ना आलस्य और अलबेलेपन के डलप से डलप को त्याग करके हम उमंग उत्साह में आए, उल्लास में आए, अपने लक्ष्य की ओर हमने टोटल फोकस किया है। उसके बाद में कितना अच्छा, तो उसके बाद में जो सबको नीचा देखने की जो भावनाएं हमारे पास में थी, नीचा दिखाना, नीचे नीचा देखना, नीचा दिखाना, इस प्रकार के संस्कार हमारे पास में थे। तो फिर बाबा ने हम सबको जो तरीके बताए कि इस प्रकार की भावना अगर तुम रखोगे तुम कभी भी उठ नहीं पाओगे, इसलिए उसको भी महान समझो, ऊंची नजर से देखो, अनादि रूप में देखो, आदि रूप में देखो, तो वो भी उड़ जाएंगे आपकी नजर से भी और तुम भी उड़ जाओगे। हाँ, तो नीचा नीचा जो पना है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपी हुई है, अगर हमारा अटेंशन नहीं होगा कभी भी वो हावी होता है। इसीलिए अभी 17वां है ना, तो 17वां पॉइंट में जैसे कि शब्दों की जो घायल करने की जो शब्दों से घायल जो होते हैं ना, जैसे किसी को पीटते हैं कोई फिसल जाता है, कोई हड्डियां टूट जाती है तो 2-4 महीने में ठीक होके आ जाता है, लेकिन शब्दों ने किसी को घायल कर दिया है उसकी ट्रीटमेंट इतना जल्दी नहीं हो पाती है। तो उसको उसके लिए हमने क्या सोचा कि इन सबको अब है ना मलम लगानी है, शब्द महावाक्य बन जाए, महावाक्य बन जाए, सत वचन बन जाए, सत वाणी बन जाए, वरदानी बोल बन जाए, और उनके जो घाव बने हुए थे उसको मलम लगाने का काम किया। क्योंकि शब्दों का घायल हुआ व्यक्ति कई साल तक बेड पे पड़ा रहता है, मन के अंदर वो संकल्प घुसते रहते हैं और कभी भी उतना ज्यादा वो फ्री नहीं हो पाता है, वो बातें वो व्यक्ति याद आते ही वो जैसे कि मुरझा जाता है। तो 18 में तो 18 में जैसे कि हम पहले ब्लेम गेम खेलते थे, दूसरों को ही दिखाते रहते थे, ये ऐसा है तो वो ऐसा है, इसने ऐसा किया इसीलिए ऐसा हुआ, इस प्रकार की बातों में हम लगे रहते थे। जिम्मेवार कभी भी हमने स्वयं को नहीं समझा है और जिम्मेवारी कभी भी हमने बहन नहीं की है, मुझे बनना है मुझे करना है, तो ये ब्लेम गेम को हमने छोड़ दिया और उच्च पद के दावेदार बन गए, हम लक्ष्य रखा, ब्लेम को क्लेम में बदल दिया, उच्च दावेदार। हाँ, उच्च पद के दावेदार बना दिया आपने को। तो 19वीं हमने वो पॉइंट निकाला, जो कोई गाली देता है तो धर्मराज की सजाओं को कम करने का साधन समझा है हमने, धर्मराज की सजाओं को कम कर रहा है ये, नहीं तो वहां कितना गुना सजाएं मुझे मिल जाती थी, तो उसको कम करने का यह आधार बन गया है। तो ये 19 नंबर में धर्मराज की सजाओं को कम करने का हमने आधार मान लिया है। तो 20 में जैसे कि बेहद के बैरागी बन गए हम, स्वतः बैरागी आ जाता है, और तो लोग जैसे कि 2-4 दिन किसी को गाली दो किसी को कुछ पिंच करने वाले शब्द बोलेंगे ना, 2-4 दिन वो खामोश हो जाता है, जैसे खोया खोया लगता है, जैसे किस संसार से उसका जैसे कि लंगर उठ गई है, अब अभी उसको अगर भगवान में लगा ले उस समय को तो उससे कितनी ताकत कितनी एनर्जी मिल जाती है। तो इसीलिए गाली को भी हमें बेहद का आधार वैराग्य का आधार बना दिया है। तो फिर उसके बाद में ये गाली भगवान से मिलाने का आधार बन गया है, भगवान के गले का हार बना दिया है। पहले गाली सुन सुन के हार गए थे हम सब, जीत किसी को पाते नहीं थे, जीतना कितना मुश्किल है संसार, किसी को जीता ही नहीं जा सकता है, हम एक शब्द बोलेंगे वो 10 बोलेंगे। तो इसीलिए हमने समझा कि अब खामोश हो जाओ और बाबा को अपना जीवन का साथी बनाओ, सर्व संबंध बाबा से जोड़ने के निमित्त बनाया। कभी कदा हमने भी इसका अनुभव किए थे, क्योंकि थोड़ा सा अनबनी हुई थी हमारे डिपार्टमेंट बॉस के साथ, तो उस समय जीवन में पहले बार हमने सर्व संबंध का अनुभव किए, बहुत सुंदर अनुभव किए, इतने अच्छे अनुभव हुए। हाँ, जैसे कि वो अनुभव अभी भी काम कर रहा है। तो इसीलिए शुक्रिया हमने कहा उनको भी, क्योंकि सर्व संबंध का अनुभव नहीं तो मेरे से नहीं हो रहा था। और सर्व संबंध रट्टा तो लगा रहे थे लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस समय कभी माता के रूप से, कभी पिता के रूप से इतनी गहरी अनुभव हुई, जिसके कारण से जब कभी थोड़ा दूध पीने का होता था तो गिलास में दूध लेकर के बाबा को बच्चा बनाता था, और जैसे कि बिस्किट और दूध उसको मैं खिला रहा हूँ, तो कभी तो आंखें भर के आ जाती थी, आंखें भर जाती थी। उसके बाद में जो गाली देने वालों को हमने गले लगाए, पत्थर बरसाने वालों को, शब्द रूपी पत्थर बरसाने वालों को पुष्प वर्षा किया, थैंक्स किया, उसको शुक्रिया कह दिया, क्योंकि अगर आप न होते तो हम ये नहीं कर पाते। इसीलिए दुनिया में जितने भी महान आत्माएं बने हैं, उस सभी आत्माओं ने हंडर खाए, ठोकरें खाई। जैसे कि एक बार दिखाते, हम सब ने पढ़े भी हैं हिस्ट्री में, गौतम बुद्ध एक जगह जहां लेक्चर दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो वो क्रोध के ऊपर ही प्रवचन दे रहे थे, शांत मुद्रा में बैठ करके उनकी लेक्चर चल रही थी। तो एक व्यक्ति सुन रहा था, बहुत अकड़ापन से ग्रसित व्यक्ति था, दुखी भी था वो, तो लेक्चर सुनते सुनते जैसे कि नमक पानी से अगर कोई व्यक्ति स्नान करे, है ना, उसको कहीं भी नमक की फीलिंग नहीं होगी, लेकिन कहीं घाव लगा होगा, कहीं कटा हुआ होगा, तो उसको तो जैसे कि मरने जैसी हालत हो जाती है। इसी रीति से हमारे अंदर भी कोई खोट होता है ना, उसके बारे में कोई व्यक्ति उसके ऊपर बोलता है, वो व्यक्ति ऐसा है करके उसको पता नहीं है, लेकिन चुपता उसी को है जाके, ये मेरे लिए बोल रहा है मेरे लिए कह रहा है। तो हम सेंटर में डेली जाते थे, तो एक माता जी थोड़ा अनुपसन बोलती थी, कुछ कुछ करती थी, उसी दिन मुरली में वो पॉइंट आता था। तो माता जी बोलती थी कि इन्होंने मुरली बना के ले आए मेरे लिए, इसने पहले जाके बता दिया होगा उसको, इसीलिए इसने यहाँ पर एड करके लाया है, ऐसे बोलती थी, डेली झगड़ा करती थी, उसकी बातें डेली आता था वहां पर। तो फिर गौतम बुद्ध को थोड़ी देर सुनता रहा ना, तो उसको रहा नहीं गया, उसने नजीक आकर के मुंह में थूक भी दिया और चला गया। तो सारे लोग, उनके जो शिष्य बैठे थे, उन्होंने सोचा कि तथागत को बीच में इसने बदनामी कर दी, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उनके ऐसे संकल्प चल रहे थे। फिर उसने समझाया कि ये वो टेंशन में था, वो तनाव में था, वो घर में लड़ाई झगड़ा करके आया हुआ था, इसीलिए ऐसा किया, इसको छोड़ दो बोल के उसको छोड़ दिया उसने। और जाने के बाद में उसको रहा नहीं गया, उसको जैसे कि बेचैनी हो गई, मैंने ऐसे महान आत्मा को ऐसे कैसे बोल दिया। तो दूसरे दिन उसको ढूंढते ढूंढते उस गांव में आया, आकर के गौतम बुद्ध के चरणों में गिरा और बोला कि कल मैंने आपको भला बुरा कहा, आपको मुंह में थूका, वही व्यक्ति हूं मैं। उसने क्या बोला, व्यक्ति मैं वही हूं। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या बोला, कल की बातें तो हमने कल ही छोड़ा आया है, वो लेके थोड़ी हम चलते रहेंगे, और तुमने इतना गाली गलौज किया है ना, तो ठीक है, अगर मैं गाली तुम्हें देता भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता, कितने युक्तियुक्त शब्द है इसमें, मैंने क्रोध को जीता हुआ ऐसा कुछ नहीं बोला है। हाँ, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं गाली तुम्हें दे भी देता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता। तो इसका मतलब ऐसे जितने भी महान आत्माएं हुए हैं संसार में, इस सभी बातों से पास होकर के वो गुलाब की तरह चमके। तो बाबा भी हम सबको रूहानी गुलाब बनाने चाहते हैं, रूहानी फूल बनाने चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा जब मुरली चलाने से पहले गार्डन में जाकर के, है ना, हर दिन गुलाब का फूल लेके आते थे बाबा, और फिर बताते थे तुम्हें भी ऐसे रूहानी गुलाब बनना है, तो दिखाते थे बाबा। तो इसी रीति से हमें भी बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी है, जिस प्रकार की सावधानी की है, हमारे ऊपर जो भी उम्मीद और भरोसा रखा है, हमें भी गालियों को गुलाब बनाना है, गुलगुल फूल बनना है। तो यही हमारे जीवन का आधार भी है और आध्यात्मिकता की चरम सीमा भी यही है, क्योंकि हम कितना इस खुशबू को फैला सकते हैं और हर चीज को जीत करके विजयी बन करके दिखा सकते हैं। ये हमारा लक्ष्य भी है तो उद्देश्य भी है। इसलिए जो भी चिंतन किया था आप सबके साथ शेयर किया। इतने में ओम शांति, ओम शांति।
नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते, पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है।